दान
बात
भाई,
तो सही है, वो काम कर रहे होते हैं। हाँ
हम लोग वही वो होता है ना कि हार्ड वर्क और वर्क हार्डली वर्क है, वो ऐसा वाला डेफिनेशन आ गया आपके आगे। सच बता रहा हूँ मैं, सीरियस बोल रहा हूँ।
एलबी डीएनिंग तो नहीं कर, एलबी डीएनिंग
हाँ,
तो नहीं कर,
एलबी
लुक बिजी डू नथिंग,
डू
लुक
नथिंग।
बिजी डू नथिंग।
नहीं, अगर ऐसा होता ना तो चेयरमैन अवार्ड ना मिलता मुझे।
चेयर अवार्ड, चेयर अवार्ड,
चेयर चेयरमैन आपका दोस्त है, ठीक है।
Love the Muslims. I think they're great people.
Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me,
"Tabdili na nahi rahi."
Assalamu alaikum. Welcome to a delayed edition of the Podcast Chalk, episode 10. Mera naam Akif hai, mera taluk Sindh se hai. Mere saath aaj virtually baithe hue hain the man with the identity crisis, Ashar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bhai chhod do, purani ho gayi episode yaar.
Yeah, they can views, reviews, hits, downloads.
Acha acha. Oh, famous. Replugging, replugging, tum shamelessly replugging.
Nahi, Ramzan hai to shamefully replugging. और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अदनान भाई।
अस्सलाम वालेकुम।
और हमारे साथ आज बैठे हुए हैं कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड सुफियान।
अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है, आपको कोई मसला है मेरे फाइनेंस बैकग्राउंड से? बार-बार बोलते
नहीं,
क्या
बस
होता?
मुझे ये था कि आपका इतना
सबका सबका बैकग्राउंड बताते हो, मेरा बैकग्राउंड क्यों नहीं बताते हो?
मेरा
तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है ना।
हम चाह रहे हैं आपको एक मिस्ट्री रखे, जैसा टॉप गियर के अंदर होता है ना स्टिक, जो है एक मिस्ट्री ड्राइवर होता है, हम आपको, हम हमारे स्टिक है। और आज जो है फाइनली हमारे साथ हमारा फीमेल पर्सपेक्टिव भी आएगा, हमारे हमने फाइनली जो एक फीमेल स्पीकर अरेंज किया है, तो उनको हम पॉडकास्ट के आखिरी सेक्शन में उनसे हम बात करेंगे।
गुड,
मैं स्टार्ट करता हूँ। एक माजरत से, हम थोड़ा सा डिले हो गए, एक दो दिन डिले हो गए, हमें थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था, तो उम्मीद है हमने इससे कुछ सीखा है और हमारे एडिटर जो हैं इस दफ़ा बेहतर काम करेंगे एडिटिंग में। मैं शुरू करता हूँ एक शाउटआउट से। हमारे एक फॉलोअर थे डॉक्टर हुसैन मीर ट्विटर पे @MHSAINM, वो कहते तो अपने आप को डॉक्टर हुसैन, उम्मीद है वो होंगे और हो भी सकते हैं डॉक्टर हुसैन, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मुझे एक मसला है। उन्होंने अपनी बायो में लिखा हुआ है फ्यूचर न्यूरोलॉजिस्ट, तो
न्यूरोलॉजिस्ट है ना, इसका मतलब MBBS किया हुआ होगा ना पहले।
Well, I hope किया है, वरना अगर नहीं किया हुआ तो फिर मसला होगा।
नहीं, आके बहुत शक में बैठा हूँ आज।
नहीं देखो, अगर मैं अपने आप को फ्यूचर टाइकून कह रहा हूँ तो फिर मैं अपने आप को करंट टाइकून नहीं कह सकता। It would be disrespectful।
तुमने कोई डिग्री की भी है टाइकून यूनिवर्सिटी से?
But you don't learn to be a tycoon, you become a tycoon, ठीक है? You are born a tycoon.
Not always, but
हाँ। Exactly. Coming from the tycoon. Coming from the tycoon itself, not always.
अच्छा,
ठीक है, जाया नहीं करना पैसे अपने।
चले फिर हम वेट करेंगे सुफियान का, सुफियान से हम वन ऑन वन एक पॉडकास्ट करेंगे, वो हमें बताएगा his journey to you know from rags to riches। सुफियान अपनी जर्नी बताएगा हमें,
ठीक है,
उस पर एक पॉडकास्ट कर सकते
कर सकते।
चले आज की ताजा तरीन, पिछले हफ्ते की ताजा तरीन, डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर फिरदोस, आशिक अवान, हमारी एक्स जो है सैपएम थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। अदान पे क्या ख्याल है, क्यों इनको निकाला गया है?
मेरे ख्याल में जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं कि कोई करप्शन के केसेस थे इन पे, तो पीएम साहब ने इनको बुलाया था, उसके एक हफ्ता पहले शायद इनको बुलाया था, उसके बाद इनको जो है ना चेक कर दिया गया, दैट्स इट। और मेरे ख्याल में
उनकी
परफॉर्मेंस
उनकी परफॉर्मेंस अच्छी,
उनका बैकग्राउंड है, वो फॉर्मर डीजी आईएसपीआर रह चुके हैं।
دیکھیں جی, میں میرا اس میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹھیک ہے باجوہ صاحب فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں تقریباً 40-45 سال, تو ان کی جاب ہو گئی ہوگی نا, تو 40-45 سال انہوں نے ہمیں سرو کیا ہے, بہت اچھا انہوں نے لے کے چلے ہیں اپنے جس عہدے پہ بھی رہے ہیں بڑے اچھا لے کے چلے ہیں اس کو. اب ہمارا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بس اب 40-45 سال آپ نے سرو کر لیے, آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں سگار پیئیں, اور جو ہے اب جو ینگ جنریشن آ رہی ہے ان کو آگے آنے دیں, ٹھیک ہے. تو اب ان کو میرے خیال میں یہ جو ایکس صرف میں اس ایکس جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا, میں سول اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں. یہ جب بھی ریٹائر ہوتے ہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کسی نہ کسی عہدے پہ, جج ریٹائر ہوتا ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, جب الیکشن ہو رہے تو کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے نا 40% 50% میں نے ینگ بندوں کو ٹکٹ دی ہیں, وہ آئے ہیں تو وہ کہاں پہ ہیں, ان کو کب یوز کرنا ہے انہوں نے, اگر
شبلی فراز آئے نا یار اتنے ینگ ہیں رہ چکی ہیں دور میں, اور پی 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 سے ہی تعلق تھا اور ادھر سے ہی وہ امپورٹ ہوئی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بیسکلی سیالکوٹ کی سیٹ سے لڑتی ہیں, ان کی اپنی کنسٹیچوئنسی سیالکوٹ میں جدھر سے وہ ہاری تھیں پچھلے الیکشن سائیکل میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ سے. تو انہوں نے عادل عباسی کے شو پہ لاسٹ ویک آئی بلیو غالباً پچھلے ہفتے کی تاریخ کو انہوں نے ہفتے کے دن ایک شو کیا جدھر انہوں نے ان چیزوں کو ویلیڈیٹ کیا جو کہ اس سے بھی پہلے یوٹیوب پہ روف کلاسرا یعنی مائناز تجزیہ گار ہیں, انہوں نے آلریڈی یہ شائع کر دی تھی کہ ہمیں اندر کی خبریں ملی ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے میں ان کے خان صاحب کے اسسٹنٹ اینڈ دا نیو جہانگیر ترین اعظم خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے بلایا ان کو اور انہوں نے کافی رگڑا ان کو اور بولا کہ بھائی آپ کے خلاف تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں اور آپ ریزائن کریں. اس سے پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی ہیں کہ بھائی میں خان صاحب سے میں نے ٹائم لیا, میں گئی, انہوں نے مجھے اشورنس دی کہ دیکھیں آپ کو کسی طرح کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے, آپ ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں ایوری تھنگ. اب جیسے وہ ان کا ایک موقف ہے, میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بولا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بتایا خان صاحب کو کہ بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میری اپنی پوزیشن کیا ہے, یہ انہوں نے عادل عباسی کے شو میں بیٹھ کر بتایا یہ بات. میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ بھائی میری پوزیشن کیا ہے, میں تو فیڈرل منسٹر نہیں ہوں, میں تو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہوں, تو لائن آف کمانڈ چونکہ ایک اسٹریٹ فارورڈ نہیں چل رہی ہے, تو میرے بندے میرے نیچے بندے بٹھا رہے ہیں اعظم خان صاحب, ٹھیک ہے نا, اور لوگ, اور انہوں نے ایف آئی اے کے شہزاد اکبر کا بھی نام لیا میرے خیال سے, تو اور میرے لوگ نیچے لوگ بٹھائے جا رہے ہیں, اینڈ یو نو دے آر ٹیکنگ دیئر اون شاٹس اینڈ کالنگ دیئر اون شاٹس انڈر وائل بینگ انڈر می اینڈ مجھے انڈر مائن کر رہے ہیں. خان صاحب نے سمجھایا کہ بھائی نہیں کوئی نہیں, تو میرا نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا جو بتانے کا مقصد یہ ہے, جو بات کرنے والی ہے, ایک تو آسم باجوہ صاحب کی ایک بات جو آپ نے مطلب ایک بات آپ نے چھیڑ دی آلریڈی جس پہ بات کرتے ہیں, پر میں یہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب اس طرح کتنے لوگ آئیں گے اور جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے مجھے اشورنس دی, اور ایون انہوں نے یہ تک کہا بعد میں, انہوں نے کہا یہ جب عادل عباسی کے شو کے بعد روف کلاسرا نے پھر سے ایک اور یوٹیوب پہ ویڈیو شائع کی, انہوں نے کہا بھائی مجھے پھر اندر کی خبریں ملی ہیں کہ فردوس عاشق اوان کو اس انٹرویو کے بعد ایکچولی کالیں واٹس ایپ پہ پھر میسیجز آئے خان صاحب کا, ان کا خان صاحب اور ان کا تبادلہ خیال ہوا, جس پہ خان صاحب نے ان کو کلیئرلی کہا کہ خدارا پلیز آپ دوبارہ نہیں جائیں باہر جا کر, نہ یہ مطلب یو نو ایئرنگ دی ڈرٹی لانڈری سو ٹو اسپیک وہ نہ کریں اور اعظم خان صاحب کا نام نہ لیں, اس سے پارٹی انڈر مائن ہوگی. جس پہ انہوں نے کہا جو جہاں تک روف کلاسرا کی مطلب کی اپنی ویڈیو کی کا سوال ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی فردوس عاشق اوان صاحب نے کہا کہ بھائی میں ایک پولیٹیشین ہوں, مجھے اپنی کنسٹیچوئنسی ڈیفینڈ کرنی ہے, اس طرح تو آپ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی کہیں گے اور مجھے فریم کر دیں گے, کل کو میں اپنی کنسٹیچوئنسی بھی ہار جاؤں گی, تو میں تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے ایک لانگ ٹرم پولیٹیشین ہوں اور سیاست کرنے آئی ہوں.
دیکھیں اشرف بھائی, ایک منٹ یہاں پہ دیکھیں, جب آپ عہدے پہ ہوتے ہیں نا یہ باتیں اس ٹائم کرنی چاہیے, جب آپ عہدے سے ہٹ جاتے ہیں نا اس ٹائم ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. جب آپ میں ایک ہمت ہے نا تو پھر آپ جب عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہو تو اس ٹائم کہو کہ یار جو مجھ سے وعدے کیے گئے تھے کہ میں نے جب عہدہ لیا ہے تو اس وجہ سے عہدہ لیا ہے تو یہ 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 وجہ
ہے. عہدے پہ رہ کر کون, عہدے پہ رہ کر کون بات کرتا ہے؟ یو ایس میں بھی اتنے لوگ
اپنے اپنے پاؤں پہ کون کلاڑی مارے گا, وہ بولے گا بھی جیسے چل لے تو چل تو رہنا.
یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عہدے سے ایس او پی نہیں ہے نا, ہٹ کے عہدے سے ہٹ کے ان باتوں کی ویلیو نہیں رہ جاتی. اور دوسری آپ بات کریں روف کلاسرا صاحب کی, تو کل کا یا پرسوں کا کالم میں پڑھ رہا تھا حامد میر صاحب کا, تو انہوں نے اس کالم میں یہ لکھا ہوا کہ جو آپ سواتی صاحب کی بات کر رہے ہیں یہ ان کا کوئی بھی نہیں لینا دینا ان کے ساتھ. یہ جب آئی تھی ڈاکٹر صاحبہ تو انہوں نے وہ درانی صاحب کو بھی کھڑے لائن لگایا, ان سب کو بھی کھڑے لائن لگا کے, تو انہوں نے یہ پی ایم کا خود کا فیصلہ ہے کہ ان کو ہٹایا, یہ حامد ویر نے اپنے کالم میں لکھا.
وہ ٹھیک ہے تو ان کو پی ایم صاحب کو پھر وہ تو بھائی دیکھیں ایک سمپل, میں آپ سے سمپل سے سوال کر رہا ہوں دان بھائی, آپ نے پچھلے ہم نے پچھلے ہفتے بات کی اس پہ پھڈا بھی ہوا کہ یار پی ایم کا کام تھوڑی ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل کو ڈیفینڈ کرے گا. ٹھیک ہے چلیں مان لیا. یار آپ مجھے بتائیں کہ ایک فیڈرل منسٹر نہیں تو اسپیشل اسسٹنٹ تو ہیں, ایک بڑی سینئر پوزیشن پہ ہیں آپ کی پارٹی سے, آپ کو آپ نے لے کر آپ کا اتنا بھی ان کا حق نہیں ہے جو انہوں نے کلیئرلی بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں کہ بھائی خان صاحب نے مجھے پرسنلی ڈی نوٹیفائی نہیں کیا, خان صاحب کے آفس نے مجھے ڈی نوٹیفائی کیا.
اور ان کی جو پہلے اس سے پچھلی جو میٹنگ بھی ہوئی تھی اس ٹائم تک کوئی ایسی کنفرمیشن آئی نہیں تھی کہ بھائی کوئی
مجھے
پرابلم نہیں ہے کہ ایک منسٹر آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے تیسرا جا رہا ہے, ٹھیک ہے یہ پی ایم کی سوابدید ہے, یہ پی ایم کی سوابدید ہے جس کو اس کے پانچ سال ہم نے اس کو پی ایم بنایا ہے. ٹھیک ہے آپ پانچ سال وہ اپنی ٹیم بنائے گا, جس کو لگائے گا جس کو ہٹائے گا وہ, ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب آپ یہ صرف یہ ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں ہے, کوئی بھی آپ کوئی بھی عہدہ جب بھی وہ اپنے عہدے سے ہٹتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ الزام تراشی کرتا ہے, یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے.
میں آپ سے 100% اگریڈ ہوں عدنان بھائی, میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں ایس او پیز کیا ہے, مطلب طریقے کیا کا ہے. دیکھیں
یہی ہے بس, اور کوئی اس کی ایس او پی نہیں ہے کہ پی ایم چاہے تو اس کو ڈی نوٹیفائی کر دے اور اسی ٹائم اس کی وزارت ختم ہو جاتی ہے.
ایک چیز ہے دیکھیں جب ہم یہ نیوز کی بات کرتے ہیں تو اگین وہ پنچ آف سالٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس کا کافی مطلب آف لیٹ فرام 2017 وہ پرائیویٹ کانورسیشنز میں ان کا آتا ہے کہ مطلب شی از ناٹ ویری سیٹسفائیڈ وتھ پی ٹی آئی پارٹی اٹ سیلف, مطلب ان کے آگے پیچھے ان کے حالات اوپر یہ چل ہی رہے تھے. تو مے بی اگین اب اگین جو نیوز ہم لوگ کو باہر نکل کے آ رہی ہے مے بی اٹ از سورٹ آف فیبریکیٹڈ, کیونکہ اگین اگر ہم اس طرح جس طرح وہ پورٹرے کر رہی ہیں کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے.
اچھا اور بائے دی وے عدنان بھائی میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے یہ کہا ہے بار بار کا, ایک بار نہیں ہزار بار کا کہ مجھے باقاعدہ خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مجھے نا اصل میں فیکٹس جو ہیں وہ تھوڑے مساج کر کر بتائے گئے ہیں, آپ فکر نہ کریں میں انشاءاللہ اس کو ہینڈل کروں گا. تو مجھے بات بتائیں کہ خان صاحب کو اگر چین آف کمانڈ میں اگر ان کو فیکٹس مسخ کر کر بتائے جا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے لے رہے ہیں تو یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ بھی ان کی سوابدید پہ ہو گئی. یعنی مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں, ایک تو یہ کہ بیوروکریسی میں کوئی نہ کوئی تو ایشوز ہیں, اتنا زیادہ ہائی ٹرن اوور ہونا اور اس کے ساتھ سے اتنے زیادہ پھڑے ہونا کہ جہانگیر ترین جیسے بڑے بڑے عہدیدار بھی جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اوپنلی, بڑی بات ہے یار, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سٹنگ پرائم منسٹر کے لیے باتیں کہنا, سم ون ہوز پرائیویٹ جیٹس یو فلو ان, ٹھیک ہے اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. مطلب آپ اس کو انڈرمائن نہیں کریں کہ یہ ایک بہت بڑا یو نو کانفیڈنس کرائسس ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا یہ ایک بات, دوسری بات ایک اور چیز ہے, چلیں آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, میں پھر بھی آپ سے بات عدنان بھائی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو وہ جوتا ہے جو کہ آپ نے اپنے سائز کا بنایا اور اپنے منہ پہ مارا, ٹھیک ہے نا. تو ہوا یہ کہ آپ نے باہر سے لوگ منگوائے, ٹھیک ہے نا, ان میں عقیدت تو ہے نہیں آپ کے لیے وہ, ٹھیک ہے, ان میں وہ تو احترام نہیں ہے پارٹی کے ویژن کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ پارٹی کے مینیفیسٹو کے لیے واٹ دا پارٹی سٹینڈز فور,
ٹھیک ہے, نکال دیا پھر انہوں نے نکال دیا ختم.
سن تو لو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے پھر یہی ہونا تھا کہ وہ آپ کو گندا کریں گے, جب وہ نکلیں گے تو آپ وہ گندا ہی کریں گے نا, تو آپ کو یو نیو ایگزیکٹلی واٹ واز کمنگ ٹو یو ایز ویل. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ساری چیزیں عدنان بھائی آپ کو سسٹینیبل نظر آ رہی ہیں,
इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि इतने ज्यादा टर्नओवर हो रहे हैं, लोग जाकर गंदा कर रहे हैं पार्टी को, एंड देन ऑन द अदर एंड, ऑन द अदर एंड व्हिच इज लाइक एक और चीज है, उस पर हमने मीम भी आके मेरे ख्याल से मे बी यू कैन एक्सप्लेन के हमने लगाया भी था कि फिर उसके बाद जाहिर सी बात है यू नो द वन हु इज कमिंग एंड रिप्लेसिंग देम लेट्स से इज एक्स रिटायर्ड मिलिट्री बिग डैडी, ठीक है ना. तो अब ये एक अब ये बिग डैडी का रोल भी एक बड़ा तश्वीशनाक हो गया कि ये 18वीं तरमीम भी आ गई है, उसमें और भी चीजें स्पेकुलेशन में आना शुरू हो गई हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इनमें से कोई भी चीज आपको नॉर्मल नजर आ रही है, मतलब या मैं शायद देखने का मेरा नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है.
चलो अच्छा मैं बताता हूँ अगर अलाउ करेंगे. आपने कहा ठीक है कोई हमने एसपी एग्री कलर डजंट हैव टू बी एन एसओपी, जिसको निकालना निकाले, उसको अथॉरिटी दी हुई है पब्लिक ने, उसके उसकी अथॉरिटी है वो. अब जिसको उससे रिप्लेस किया है आर्मी का, उस पर आप बात करें, हम इस पे 100% श्योर नहीं होने क्यों निकाला. हो सकता है कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं उन पे कुछ करप्शन के केसेस थे, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने खुद कहा कि कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, मीडिया के अंदर लीक हो रही है, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन फॉर लीकेज. Leakage of information is not a good sign for her ministry.
Leakage is never a good sign, bhai. Aap doctor se check karein.
Haan, especially. Okay. Chale. Especially for the SAPM, it's not a good sign. Toh, isi basis pe unko nikal sakte hain. Jis tarah nikale, unki marzi hai. Theek hai, unhein wo upar se achi achi baatein keh di hongi, phir unka baad mein agle din denotify kar diya hoga. I don't see any particular issue with that. Ab aapne aise bande ko leke aaye, DG ISPR. Ab aap kya ilzaam dalenge ki ISPR mein leakage hai bahut zyada?
क्या मतलब किस एतबार से?
एफिशिएंसी से, कॉम्पिटेंसी से,
उनकी कॉम्पिटेंसी पे कुछ पे आ गए हैं. अच्छा अच्छा मैं कॉम्पिटेंसी और मैं साथ नहीं लेता इन चीजों को साथ, सॉरी एक ही डिस्कशन में. तो वो कॉम्पिटेंसी पे आ गए हम. अच्छा मेरिट पे देखें, अब बात करें तो इस पे अदनान भी बेहतर समझा सकते हैं हमें. मैं तो सिंपली ये कहूंगा कि भाई हमारा इस वक्त स्ट्रक्चर, हम किस तरफ जा रहे हैं. क्या अगर हम एक जैसे कहते हैं ना, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स और क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे, या आप इलेक्टेड जो अपने नुमाइंदे हैं, आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको चाहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म लें जिनको आपने हमने मुंतखब किया है, ठीक है ना, जिनका आपने इंतखाब किया, जिनको आपने वोट दिया है, वो जाकर आपको रिप्रेजेंट करेंगे एज फेडरल मिनिस्टर्स, एज पीपल इन की पोजिशन. आपको पता है कि क्या कहते हैं इस वक्त पीटीए में, केईसी में, सैपम अभी यहाँ पे लगे हैं, मेरे ख्याल से काफी जगह हैं इस वक्त जहाँ पे बिग डैडी
एनडीए में. वो दिन हमने जो मीम बनाया था,
अशर भाई आप कह रहे हैं ना कि लोगों ने इलेक्ट किया है. मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या इलेक्ट किया है लोगों ने?
एक मिनट में मेरी बात सुने. देखें जी, नॉन इलेक्टेड जो लग रहे हैं ना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना. जो नॉन इलेक्टेड लग रहे हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है. अगर हमें नहीं चाहिए नॉन इलेक्टेड, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम वोट दें, हम किसी भी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम अपनी जब हम वोट दे रहे हों तो हम टूटी टिंकी पे वोट ना दें. हम कहें उनको कि यार जो भी MNA आ रहा है या MPA आ रहा है, उसको हम ये ना कहें कि यार तुम मेरी सड़क बना दो, या तुम मेरी टूटी बना दो, या तुम मेरी टंकी बना दो. उसको हम ये कहें कि तुम लोगों का काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तुम लोगों का काम है आइन बनाना. हमें आइन की ये वाली जो शीक है ना, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना. अगर हम नहीं चाहते कि नॉन इलेक्टेड बंदे आए हुकूमत में, तो हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन की शीक को निकालना पड़ेगा. जब वो शीक में है तो लीगल है, वो लगा सकते हैं इस पे, ठीक है. तो हम जब वोट देते हैं तो हम तो टोटी टंकी में उठ के वोट दे देते हैं, ठीक है. और हम MNA MPA को कहते हैं कि यार तुम मेरी टूटी बना दो, तुम मेरी टंकी बना दो, तुम मुझे थाने से मेरा बंदा निकाल के दे दो, ठीक है ना. हम उससे जब भी किसी भी पार्टी से हम अगर बिलोंग करते हैं, तो हम उनको ये क्यों नहीं कहते कि यार तुम लोगों का काम है कि जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और ये वाली शिक डालो और इस शिक को निकालो. जब वो है, ऑलरेडी मौजूद है, तो वो तो करेंगे. जब वो मौजूद नहीं होगी तो फिर नहीं होगा. फिर
जो कि वो पूरा कर रहे हैं, और क्योंकि आप में वो कॉम्पिटेंसी नहीं पूरा करने की, ठीक है. मैं ये सारी बातें मान लेता हूँ ना. मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूँ कि देखें, इसमें दो पहलू हैं. एक तो पहलू जो आपने क्लियरली बात की, जिसके बारे में मैं भी अपने सामीन से ही कहना चाहूंगा कि भाई देखें, निकलें, प्लीज टेक पार्ट इन एक्टिवली. ये नहीं कि वोट लगाकर आ गए बस, ठीक है. टेक पार्ट इन पॉलिसी मेकिंग आप ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हर चीज, असल में एक क्रिएट किया गया, यू नो, फसाद क्रिएट किया गया हमारे मुल्क में, कि ये ना बहुत ही हाई एंड लोगों के काम है, और ये ऐसे बदमाश लोगों के काम है जो कि आपको कूट कर रख देंगे अगर आप कोशिश करेंगे.
आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिक्स है हुकूमत चलाने की वो और है, ठीक है, और इलेक्शन जीतने की और है। पाकिस्तान में जिनको इलेक्शन जीतना आता है ना, उनको गवर्नेंस नहीं आती, ठीक है ना। एक विडेरा है, ठीक है ना, उसके आगे मजारे हैं, ठीक है ना, वो इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन उसको गवर्नेंस तो आती ही नहीं है ना। उसको क्या पता कि यार गवर्नमेंट किस तरह चलानी है या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, ठीक है। एक पीर साहब है, उनके आगे मरीद है, ठीक है ना, वो तो उनको वोट दे के वो जीत जाते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट में आने की बारी होती है तो उनको गवर्नमेंट चलाना नहीं पता होती पाकिस्तान में।
ये तो आप बड़ी एक, मतलब आपने ये डीप बात की, उस पर तो हमें पूरी एक एपिसोड करनी पड़ेगी कि जाहिर सी बात है हम वो मुंतखब, ये मुंतखब नुमाइंदे हैं क्यों आखिर। मगर चलें अभी इतनी डीप नहीं जाते ना, हम तो अब ये अस्यूम कर रहे हैं कि भाई आपका वोट है, आपने जिसको दिया। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कॉम्पिटेंस, चूंकि मेरिट की बात हुई ना, मेरिट की, चूंकि खला है तो वह मुझे आप बताएं, चले नजीब हारून की मिसाल ले लें भाई, आप मुझे बताएं ना, आप जिस बुनियाद पर आए थे, मैं तो छोड़ देना, अब सारी पार्टियां अब गंदी है ना, मतलब अब तो वो हो चुके, वो गंदा भी कर चुके और सब कुछ भी हो चुका, अब तो आप है ना, आपके 5 साल अब तो गिनने हमने, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप किसी की, आप नजीब हारून की मिसाल ले लें, अगर आप फिरदौस आशिक अवान की मिसाल नहीं लेना चाहते, आप इनकी ले लें, उन्होंने तो साइलेंटली रिजाइन किया था, फिर भी वो लेटर जो था वो पब्लिक हो गया, ठीक है, उसमें उन्होंने जो कंप्लेन की थी कि भाई मुझे फंड्स नहीं मिलते अपना काम करने के लिए, मैं तो काम करना चाहता हूं, तो भाई कहने का मकसद है ये नहीं है कि ये सिर्फ है कि नहीं प्रॉब्लम सिर्फ मेरिट की है या प्रॉब्लम सिर्फ बाहर से लोगों लाने की। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आपके अंदर एक क्लियरली प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने रिजॉल्व करना है। अच्छा काम करने वाले क्यों नहीं टिकते, ये भी आपने इस बात का भी जवाब देना है।
डेफिनेटली उनको टिकने नहीं दिया जा रहा ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये नहीं है।
आपने कहा कि भाई, आपने कहा कि यंग लोगों को खान साहब लेकर आने वाले थे, मुझे ये अगर तो खान साहब भी नहीं कर पाए ये काम, मैं एक मिसाल के लेट्स अस्यूम उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, अब वो भी नहीं कर पाए, तो आप मुझे बताएं कि आप यंगस्टर्स को फिर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मतलब दिस वाज द गाय हु वाज सपोज्ड टू एक्चुअली ब्रिंग इन फ्रेश फेसेस, which were supposed to actually uplift not just the party, forget about the party, now you're in government, ठीक है ना, but uplift the nation.
अच्छा भाई, बहुत सारी चीज़ें and I suggest including the ones जब उसने promise किया था कि job हैं और you know लोग foreigners आएंगे यहाँ पे job लेंगे और जवान लोग आएंगे, I think वो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक election scoring की चीज़ें होती हैं कि मतलब आपको ना बस थोड़ा सा लोगों के अंदर वो जज्बा आ जाए कि यार भाई ये क्या बातें कर रहा है भाई, ये तो छागे बंदा कर सकता है कुछ।
तो आई थिंक which brings me to the next the final point Sufyan, which is exactly यही जो वापस अदनान भाई कह रहे हैं, लिंक इट टू दैट, कि खला ही रहेगा ना, जब लोग बस काम, बस वोट लेने के लिए लेंगे पैसे, वो वोट लेंगे मतलब सॉरी पावर में आने के लिए वोट लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद वो आकर वही चीज करेंगे जो सभी करते हुए आए, तो खला ही पैदा होगा।
और आई थिंक अशर भाई,
पैदा होने का बिग डैडी आ जाएंगे, बिग डैडी बोलेंगे तुमसे तो कुछ हैंडल ही नहीं होता, ठीक है ना।
एग्जैक्टली,
मैं समझता हूं फिर बिग डैडी से ही कर रहे हैं
आप, तो बिग डैडी की बात कर रहे हो ना, तो ये बिग डैडी ही है, ये नहीं है कि क्यों ऐसी पोजीशनों पे बिग डैडी आके बैठ जाते हैं कि भाई क्यों बैठते हैं वो, इसीलिए बैठते हैं कि वो आवाम को ये भावर करवाएं कि यार हम तो बहुत जीनियस हैं, हम जो हैं कि हमने तो, हमसे जीनियस कोई है कोई नहीं है, तो हम चला के दिखाएंगे।
देखिए
तो वो इसलिए अवाम के जहन में कोट एंड कोट ये चीज आ जाती है कि यार ये तो जो बिग डैडी है ना, तो इनसे बेहतर, इनसे इंटेलिजेंट बंदा कोई है ही कोई नहीं है। ये जाहिर बात है, वो क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, वो अवाम के दिल में ये चीज जानबूझ के डाल रहे हैं कि यार ये जो सिविलियन है, ये तो ब्लडी सिविलियन है, इनको ये तो एक तो करप्ट है, करप्ट तो चलो है ही है, ठीक है, दूसरा ये इनको काम करना आता ही नहीं है, मुल्क सिर्फ हम चला सकते हैं, हम फौज में भी बैठ के हमने चलाया, सरहदों में भी खड़े होकर हमने चलाया, अच्छा अब हम गवर्नेंस करके भी इनको दिखाएंगे, तो लोगों के जहनों में ये चीज डाल रहे हैं, तो हमारे लोगों को
तो हम क्या मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम 2000 भी तो आहिस्ता आहिस्ता हम 1999 में और 2000 में वापस चले जाएंगे, बट डेमोक्रेटिकली, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं
जो हालात चल रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं,
वही देखे
हम जब बोलेंगे नहीं जब हम बिग डैडी को कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच
फॉर
योर सर्विस, 40-45 साल आपने सर्विस कर ली, 40-45 साल सर्विस कर ली, अब बैठ के आप सिगार पिए, अगर आपको इतना ही शौक है कौम की खिदमत करने का, ठीक है, आप मशवरा दें, ठीक है, कोई बुक लिखे, रिसर्च करें, बाजवा साहब को अगर इतना ही वो था तो वो बैठते, एसओपीज बनाते, रिसर्च करते, रिसर्च करके देते कि यार जो जो इतलात की जो मिनिस्ट्री है वो इस तरह चलती है, वो रिसर्च करके देते, मेरा नहीं ख्याल कि जो जो भी एक्स आर्मी आते हैं वो किसी औहदे के लिए या किसी पैसे के लिए आते
हैं,
वो खिदमत के लिए आते हैं, तो खिदमत क्या औहदा लेके ही हो सकती है, मेरा ये सवाल है।
अदनान भाई, 100 बातों की एक बात आपने देख लिया, हमने देख लिया, जब लेटने का टाइम आया, ठीक है ना, वो फैसल बावड़ा जब बूट लेकर आया था, आपको पता है उस पसे किस पसे मंजर किस तनाजुर में लेकर आया था, जब लेटने का टाइम आया तो पीटीआई भी लेट गई और पीएमएलएन भी लेट गई और पीपीपी भी लेट गई, ठीक है ना, मतलब सभी लेट गए थे जब एक्सटेंशन की बात आई, तो हम भी तो एनेबलर्स हैं ना उसमें, ये तो सिर्फ नहीं है कि वो उनको हम अब वो उनको उनको सिगार पीने पे फोर्स करें ना यार आप,
तो
अशर भाई कौन करेगा जब ओदे पे बैठे होते हैं
तो बूट सर आंखों पे, जब ओदे से उतर जाते हैं तो मुझे क्यों निकाला वाली रट शुरू हो जाती है, ओदे पे बैठ के कहें कि ये हमें नहीं मंजूर, ये हमें नहीं मंजूर, तो इसका इफेक्ट होगा आवाम में, तो ये बात जाएगी, ये बात ओदे से उतर जो मर्जी कहते रहो, आवाम आपकी नहीं मानने वाली, ओदे पे बैठ के कहो कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, जब आप ओदे से उतर जाते हो तो फिर आप कहते रहो, आवाम नहीं मानती, आवाम कहती है कि
अशर भाई देखे एक चीज, जितने भी हमारे आर्मी पोस्टिंग्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, पीआईए, नेशनल ओलंपिक कमेटी, एनडीएमए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ,
सीपैक अथॉरिटी
ऑफ कोर्स, इनके पीछे आवाम की बैकिंग है, ये कोई आप ठीक है ये इलेक्टेड नहीं है एज पर से, बट इनके पीछे आवाम की अच्छी खासी बैकिंग है, तो आप बस यही कह सकते हैं यार कोई बंदा इनके पीछे आवाम किस तरह आर्मी का इतना इन्फ्लुएंस है,
अब फिर मैं ही इसको हैंडल कर सकता हूँ,
पीटीआई में कोई नजर आ रहा है आपको?
नजीब हारून वाज वन ऑफ देम यार, योर ओन पार्टी, शिबली फराज इज वन ऑफ देम, शिबली फराज इज वन ऑफ देम,
तो आगे शिबली फराज भाई,
सदाकत अब्बासी है जिसने,
यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, डू यू,
सदाकत अब्बासी है जिसने हमारे एक्स पीएम को इलेक्शन हराया, वो अच्छा बोल
भाई, मैं आपको
बंदा है उसको लगा ले, यंग बंदा है उसको लगा,
मैं अब्दुल्ला भाई से, मेरी अब्दुल्ला भाई से बात हो रही थी इस मौजू पर, और मैंने कहा भाई शिबली फराज हो या अवाम हो, ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए 100 बातों की एक बात, शिबली फराज के वालिद साहब जो मायना शायर रहे, जाहिर सी बात है अहमद फराज, उनका एक शेर पढ़ देता हूँ ताकि हमारे और आपके दिल को ठंड पै जाए कि असल बात है क्या। तो अहमद फराज साहब कहते हैं, दिल को तेरी चाहत पर भरोसा भी बहुत है, ठीक है, दिल को तेरी चाहत पर भरोसा भी बहुत है,
वाह
अदनान भाई, दिल को तेरी चाहत पर भरोसा भी
बहुत है,
और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता अदनान भाई,
हाँ।
और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता,
नहीं जाता।
तो देखें ये धजका तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर तो आप एक पार एक साइड पे हो जाएं ताकि ये धजका ना लग रहे, हम कभी खान साहब से उम्मीदें लगाएं, कभी किसी से उम्मीद लगाएं, अच्छा पॉलिटिशियंस भी इनसे उम्मीदें लगा दें, कभी ये लोटा इधर आ जाए वो लोटा इधर चले जाए कि यार इधर मेरा मफाद पूरा हो जाएगा उधर मेरा मफाद पूरा हो जाएगा, सबके ही डर डर काम नहीं होने वाला, इसमें काम कहीं नहीं होने वाला,
तो काम किस तरह होगा आशर भाई, काम किस तरह होगा,
अधपकी नहीं, अधपकी चीज से भी काम नहीं होने वाला, मुशर्रफ का दौर आपको याद है, अधपकी चीज से भी काम नहीं होता, ठीक है ना, तो इस तरह आधी पौनी चीजों से कभी काम नहीं होने वाला, इस तरह की टेंशन रहेंगी, मुल्क आगे नहीं चल पाएगा, सफर हम करेंगे,
और होता क्या है उसमें, होता क्या है, क्योंकि हर आदमी फिर जब लेके आता है ना एजेंडा, वो यही लेके आता है, ठीक है, और वो सेल यही करता है, इवेंचुअली होता है कि उसके पास कोई पावर होती नहीं है, वो चेंज कर नहीं पाता, वो जो मामला है वो और डिटेरियरेट होके और खराब ही हो रहा होता है, आप देख लें कंपेयर्ड टू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, आई थिंक सबसे ज्यादा इनका इनपुट अब है कंपेयर्ड टू बिग डैडीज का इनपुट अब है एट की पोजीशंस देन बिफोर, तो इट्स जस्ट दैट कि वो जो चीज है आप उसको इतना एक एक टाइम पे आके उसको बोल बोल के
सुफियान, एक तो ये कि इवन पीटीआई सपोर्टर्स वो कहेंगे आजकल यही हमने मीम भी इसे कराया था कि नाउ गवर्नमेंट एंड आर्मी आर ऑन द सेम पेज, आर ऑन वन पेज, अब वो क्या होना भी चाहिए ऑन वन पेज, यानी डू दे हैव अ चॉइस इन दैट, उस पर अलग डिबेट है, लेकिन ये रियलिटी है, इवन
वन पेज का ये हरगिज मतलब नहीं है कि यार जो सिविल गवर्नमेंट है वो उनके नीचे लग जाए, वन पेज का ये तो मतलब नहीं है ना, वन पेज का क्या मतलब होता है, वन पेज का मतलब क्या
है, पीटीआई वाले ऐसा जस्टिफाई करते हैं, यार देखो एटलीस्ट वो सेम पेज पे तो हैं,
इसी 18वीं तरमीम के लिए खान साहब ने एक टाइम पे बोला था कि भाई मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ प्रोविंसेस को, पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए होनी चाहिए। अभी 18वीं तरमीम की बात आएगी तो सब लेट जाएंगे। भाई ये छोड़ दो ये बातें, ये पीटीआई वोटर्स को अमनीजिया क्यों है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। खान साहब के अपने चैलेंजेस हैं, उनको पता चला पावर में आने के बाद, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है, हकायक की जो
बुनियादी
ऑपोजिशन की गवर्नमेंट अलग होती है, रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट अलग होती है।
एग्जैक्टली और आप इतने कोई वो जिस तरह वो कामरान खान का नन्हे मन्ने काके तो नहीं है कोई भी, किसी को पता ना हो कि भाई
अच्छा, क्या रियलिटी बात है भाई। दूसरी बात है, अच्छा दूसरी बात है, मेरिट पे आपने बोला था छोटी मोटी जमातों को हम नहीं देंगे, तहरीकों को हम नहीं देंगे, ये क्यों भाई? नहीं, उनके पास शाह महमूद कुरैशी जैसे स्टॉलवर्ड्स नहीं और ये नहीं हो, आधी तो टर्नओवर हो गई है पूरी, 100% टर्नओवर हो गई है, आधे से ज्यादा तो कैबिनेट टर्नओवर हो
गया।
नहीं एक मिनट, आपने नहीं, चूंकि आपने मेरिट की बुनियादों पर अटैक किया था ना कि व्हाट अ जबरदस्त मेरिट है खान साहब की। अच्छा एक तो ये, दूसरी बात, ये दूसरी बात में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा अदनान भाई, उस पर आप भी तबसरा करिएगा जाते जाते इस टॉपिक से निकलते निकलते, कि आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि लोगों को आप मतलब ये बात हमने मेरिट की बात की और बाकी सारी चीजों की बात की, मुझे आप बताएं कि जो अगर कोई चार आने का भी खुलूस है किसी में या चार आने के लिए भी उन प्रिंसिपल्स पर स्टैंड करता है तो उनका आप साइडलाइन कर देते हैं, उनको आप मुल्लाज कहकर साइडलाइन कर देते हैं, उनको आप ये कहकर साइडलाइन कर देते हैं, मतलब कोई ना कोई आप रीजन निकाल लेते हैं उनको साइडलाइन करने का। क्यों? चूंकि यहाँ पर तो आपका अपना मफाद जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उन लोगों के साथ जो जिनको आप पावर में देखना चाहते हैं, पर्सनल मफाद, या एज अ वोटर आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं किसी एक मतलब एक जैसे पीपीबी का वोटर उसमें इन्वेस्टेड है, पीएमएलएन का वोटर उससे नहीं निकल पाता उसके झाग से, और अब पीटीआई का वोटर उस झाग से ही निकल पाता। तो हमारे हम सामीन को भी ये कहूंगा कि भाई अगली बार जब वोट करें तो प्रिंसिपल्स चेंज तो लें यार अपनी लाइफ में। इस तरह अगर आप भी एक ही जगह साइड लाइन होते रहेंगे और अपने आप को अपनी अपनी यानी पार्टी लाइंस पे डिवाइड कर देंगे अपने वोट को और अपनी अलीजेंस को, ना कि पाकिस्तान के साथ, ना कि अपने 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 वतन पाकिस्तान के साथ, उसकी बेहतरी के साथ, उसके लोगों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, उसके विजन के साथ जोड़ेंगे जिस विजन पे वो बना था, तो यही होता रहेगा। ये भी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता नान भाई कुछ कहना है।
एग्रीड एग्रीड, जो भी आपने कहा बिल्कुल ठीक है आपने।
चले आने हो, कभी हमने काफी लंबी बहस करती है इसके ऊपर, बहुत कंफ्यूजन है अभी भी, पता नहीं किसको वोट देना है। अब बात करते हैं कोरोना के बारे में, कोरोना इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। आई एम श्योर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए भी काफी मुश्किलात में होंगे, मुझे भी अपनी सिर्फ आधी तनख्वाह मिली थी। अदान भी आप पूरी तनख्वाह मिल रही है?
हाँ जी मुझे पूरी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है।
जाहिर सी बात है आप दुनिया के सबसे हार्डेस्ट वर्किंग एम्प्लॉई हैं आप।
जाहिर बात है
यार, कुछ भी बोलो आकिफ, ये इस बात पे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अदान भाई ने जो अभी बोल भी दिया ना, रिएट्रेट कर लिया,
चेयरमैन अवार्ड होल्डर
रमजान में झूठ नहीं बोले यार, प्लीज क्या के लिए।
अच्छा,
मुश्किल हो रही है यार, अदनान भाई मुश्किल हो रही है मेरे लिए रमजान
में यार, हद हो गई है यार।
नहीं मतलब आप इतना ज्यादा काम करते हैं ना कि वो ज्यादा काम वाली
मैं इंटेलिजेंटली काम करता हूँ, मैं आप लोगों की तरह जो है ना पूरी पूरी रात बैठ के काम नहीं करता, ठीक है, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक
काम करते हैं।
हाँ आकिफ ने मुझे काम ऑफिस का काम करते हुए देखा हुआ, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं फिर काम कर रहा होता हूँ।
हम लोग वो था ना कि हार्ड वर्क और वर्क हार्डली वर्क है, वो ऐसा वाला डेफिनेशन आ गई आपके आगे, सच बता रहा हूं मैं, सीरियस बोल रहा हूं।
एलबीडीएनिंग तो नहीं कर, एलबीडीएनिंग
तो एलबीडीएन
बिजी डू नथिंग
नहीं नहीं, अगर ऐसा होता ना तो चेयरमैन अवार्ड ना मिलता मुझे,
चेयर अवार्ड
मुझे
बैठे ही रहेगा
जैसे जैसे पाकिस्तान में सीपे का चेयरमैन बन जाता है ना, मुझे आपके चेयरमैन में भी थोड़ा सा डाउट ही आ रहा है।
चले बात करते हैं पाकिस्तान पे कोरोना की वर्सेस लेआउट्स। आई एम श्योर काफी सारा ट्विटर पे भी आ रहा है, एक्सवाईजेड कंपनी जो है बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स जो है अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिलीफ प्रोग्राम लॉन्च किया है, अशर भाई क्या नाम था इसका?
नाम तो मुझे नहीं पता मगर प्लान कुछ इस तरह का कुछ किया,
जिनकी सैलरी थी अप टू 200 मिलियन
बेसिकली, जिनकी सैलरी लेस देन 200 मिलियन जिंक नहीं, जिनकी सैलरी 200 मिलियन, काश किसी की सैलरी 200 मिलियन हो,
मैं जिनकी बिजनेसेस की, बिजनेसेस की,
जिन बिजनेसेस की एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस 200 मिलियन से लेस है, कम है वो रुपीस, वो 100% अवेल कर सकते हैं इस फैसिलिटी को. 6 month की आई थिंक ग्रेस पीरियड है एंड 5% का मार्कअप है, विच इज लो बाय पाकिस्तान स्टैंडर्ड आई गेस. और अगर लेस देन 500 नहीं, मोर देन 500 मिलियन है इस तरह कुछ, तो फिर 50% ऑफ दैट सैलरी एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस पेरोल प्रोग्राम. तो ये बट लेट मी बी क्लियर, दिस इज ऑब्वियसली फॉर द फॉर्मल सेक्टर, नॉट फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर विच अकाउंट्स फॉर more than 70% of the economy.
Yes, so abhi State Bank ne keh rahe hain ki according to State Bank data till April 24th around 300,000 people have benefited from this scheme, aur wo keh rahe hain around 700 companies ne applications forward kiye hain, lekin fir bhi kafi kam hai na, I mean it's just 700 companies.
Akif, yeah, 300,000 kya cheez hai, 300,000
itne usse Sufyan ke paas hai
employees. Just to put it into perspective, main ek US ki abhi ek report padha tha very recently, 7.3 million registered businesses hain jisme wo log aise aise breakdown karke dikhate hain. I think the lowest category jiske andar aapko, if you can avail the discount, the salary ki jo log levy kar rahe hain as the Federal Reserve karke de raha hai, उसमें आई थिंक मिनिमम आपके कोई 10 एम्प्लॉय होने चाहिए. एक्जैक्टली आई कांट रिमेंबर एक्जैक्ट द नंबर, लेकिन 3.4 मिलियन बिजनेसेस जो कि लेस देन 4 एम्प्लॉयज पे बेस्ड आउट हैं, उनको इस चीज से कोई फायदा नहीं हो रहा. एंड द स्मॉलेस्ट बिजनेसेस आर द वंस व्हिच हैव बीन हिट द मोस्ट, क्योंकि अगेन स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल लिक्विडिटी.
मेरा ख्याल है यू नो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अब तक बहुत वाजे हो चुका है कि होने क्या जा रहा है. होने ये जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कंसोलिडेशन की वेव है, आने वाली है और आ रही है.
पाकिस्तानी मार्केट से, ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट में आई डाउट के जो जितने इनफॉर्मल बिजनेस है कोई मर्ज और एक्विजिशन वगैरह से ज्यादा बढ़ के, अगेन इनफॉर्मल बिजनेस है, एक ठेकेदार के नीचे 8-10 लोग काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है उनको काम डेलीगेट करता है और खत्म करके आ जाता है. आई थिंक यहाँ पे बिजनेसेस मर्जर एक्विजिशन से बढ़कर यहाँ पे बिजनेसेस ठप होकर गिर जाएंगे.
और मैंने कहा एमएनए कहाँ होगा, मैंने ये कहा खत्म हो जाएंगे, उनका शेयर कोई और खा जाएगा, और हम बिजनेस खा जाएंगे.
हम यहाँ पे यही होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 70% आवाम की, जो कि 2 करोड़ की आबादी के अंदर, 2-2.5 करोड़ की आबादी के अंदर 70% बहुत बड़ी अमाउंट मानी गई.
देखिए और उसकी भी हालात क्या है, उसके हालात ये है कि अभी जो सर्वे हुआ था, लास्ट सर्वे हुआ था उसमें यही था कि नहीं सॉरी एज पर 2019-2020 फिस्कल बजट फॉर प्रोविंसेस एंड प्रोविंसेस एवरेज जो सैलरी मिनिमम वेज जो तय की गई फॉर्मल सेक्टर के लिए, फॉर्मल सेक्टर के लिए वो 17,000 रुपए महाना है. अव्वल तो 17,000 रुपए महाना भी बहुत कम है, और वो भी फॉर्मल सेक्टर के लिए. इनफॉर्मल 70% है आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर. आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर अगर आप 70% अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को गेज करें तो 70% ऑफ द इकोनॉमी है. अब मसला ये है कि जब ये आप इस पर बात करें और इस पे आप सोचें कि दिन की दिहाड़ी वालों का क्या हाल होता है और कितनी वेज डिस्क्रिमिनेशन होती है और बिटवीन मेन एंड वुमेन भी डिस्क्रिमिनेशन होती है एट ऑल लेवल्स, आप सिर्फ सोच ही सकते हैं कि इस वक्त किसने किस लेवल की डिस्ट्रक्शन मतलब ढाई जा रही है हमारी इस वक्त आवाम पर. और इस पे SBP कोई भी फॉर दैट मैटर स्टेट बैंक हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई वुड से, कुछ कर नहीं सकते एज सच, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये नेचुरली इनको वापस मतलब अपने कामों पे जाने दें, obviously which is a tough decision, I can understand that, but I'm just saying कि ये एक reality है, ये reality है.
और देखिए इसकी वजह से होता क्या है, फिर होते हैं layoffs, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज मैं clarify करना चाहूँगा अगेन, क्योंकि आकिफ कहता है मेरे पास थोड़ी फाइनेंस बैकग्राउंड है तो आई थिंक मैं झाड़ने चाहिए यहाँ पे,
बट
कमिंग बैक टू इट,
बट सो फ्रेंड प्लीज तुम ज्यादा एडवांस में ना जाना.
अगेन लॉट ऑफ बिजनेसेस पे अगेन जो हम लोग ब्लेम डाल रहे हैं ना कि जो बिजनेसेस लोगों को फॉरन ले ऑफ कर रहे हैं, देखिए अगेन जब हम छोटे बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत छोटे से कैपिटल के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं अपने लोगों को देने के लिए, अपना सामान खरीदने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और अपने घर पे ले जाने के लिए. अब यहाँ पे हम जब बात करें ले ऑफ की और हम लोग जब बोलते हैं ना कि भाई सारे बिजनेस जो ले ऑफ जो कर रहे हैं वो गलत है, दैट इज नॉट राइट. अ लॉट ऑफ बिजनेसेस उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि भाई
देखो तुम्हें बात सही की, एक तो एक जो स्मॉल बिजनेसेस है उसके अंदर तो ओनर का भी लॉस है. निशात का नाम भी देख रहा था, उनका ये कि उनके ओनर्स के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैपिटल है तो वो बस बेसिकली फायर कर रहे हैं या फर्लो कर रहे हैं अपने फायदे के लिए।
मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए अभी हर कंपनी आई थिंक वी हेडिंग इनटू अ मोर लाइकली देन नॉट वी हेडिंग इनटू अ ग्लोबल रिसेशन जो कि ग्लोबली इफेक्ट करेगा। वी आर, ठीक है। अब हो ये रहा है कि मैं इनफैक्ट एक कंपनी की मैं स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट देख रहा था, तो वो लोग कह रहे थे कि भाई उनको सबसे उनका प्राइमरी टारगेट जो है ना वो कॉस्ट कटिंग है विथ मिनिमम डिस्ट्रप्शन टू द करंट वर्कफोर्स। ठीक है, अब होता ये इन लेट्स से कोरोना इज जस्ट वन फैक्टर कि वो उसकी आड़ में बहुत सारे काम जो आपको करने होते हैं ना अपने पैसे बचाने के लिए आप वो कर लेते हैं। अभी क्या है, चाहे बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, दे हैव अ गुड वैलिड एक्सक्यूज कि भाई कोरोना है, हमारी आगे डिमांड हम लोग को विजिबल नहीं दिख रही, अभी हमारे पास करंटली पैसे नहीं है, सॉरी भाई आप कहीं और जाकर जॉब ढूंढो। यहाँ पे मसला है ना, इट्स नॉट जस्ट कोरोना, इट्स अबाउट द रेगुलेशन। आई थिंक जो हम लोग, मैंने अशर भाई से पहले भी इस चीज पे बात करा था यहाँ पे कि हम जब ये रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि भाई कौन से, भाई हर कंपनी को तो पहली बात अलाउ भी नहीं होना चाहिए छोड़ने के लिए आदमी को। भाई अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास बाय लॉ यू शुड नॉट बी अलाउड टू यू नो जस्ट ले ऑफ एम्प्लॉइज जस्ट लाइक दैट।
कौन सा लो, मैं समझ नहीं पा रहा
हूँ
क्या वो लो जिसके तहत बच्चे बेचारे काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रियों में, इतना भारी काम कर रहे होते हैं, ये वो लो है जहाँ पे
मैं उसी चीज पे आना चाह रहा हूँ कि हम जब रेगुलेशन के हमें बात करें तो रेगुलेशन ऐसे टाइम पे नहीं बनाई जाती कि जब आपके पास क्राइसिस चल रहा होता है। ये जो चीज है अभी जो आप अभी देख रहे हैं ना, दिस हैज बीन इन द मेकिंग फॉर द लास्ट 15-20-30 इयर्स। जब तक आपकी कोई पॉलिसी रियली कोई एक्ट में नहीं आती ना, तब तक आप इन चीजों से दूर रह रहे थे। फिर आपको जब ऐसे कोई क्राइसिस पड़ता है ना आपके सर के ऊपर, तब आपको रियलाइज होता है इसमें तो बड़े फ्लॉज थे जो कि हम लोग नॉर्मली ओवरलुक कर रहे थे। एंड लेट्स टॉक ऑनेस्टली भाई, हम सब जब पाकिस्तान जाते हैं, हम लोगों ने कभी जब अपने गाड़ी का टायर खराब हुआ हो क्या हमने नहीं देखा कि वहाँ पे बच्चे काम करते हुए? हाँ, बट इवन देन हम लोगों ने बोला यार क्या बेचारे बच्चे की जिंदगी यार, ये बंदा ये काम कर रहा है, बट वी डिड नथिंग। हम लोगों ने ज्यादा क्या काम किया? नहीं। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ, जब रेगुलेशन की बात करते हैं ना, एट दिस पॉइंट मैं इनफैक्ट पूरा ब्लेम अभी गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकते, क्योंकि भाई एक टाइम होना चाहिए आपके पास। अगर गवर्नमेंट ने जब टाइम था उन्होंने एक्ट नहीं किया, बट एट दिस पॉइंट यू कैन नॉट जस्ट गिव देम द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपकी गलती है कि सारे लोग जो निकल रहे हैं। आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप उसको रेगुलेट कर सको, और फिर जब ऐसा क्राइसिस है तब आप मॉनिटर कर सको कि भाई वो चीज सही हुई कि नहीं हुई।
तो सुफियान तुम करोगे फिर?
इस वक्त मैं अपने सामीन से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज मोहतरम सामीन जो आप सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं, किसी भी दुनिया के कोने में, गली में, कूचे में सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने अपने मोहल्लों में देखें। दिस इज द बेस्ट वे टू रीच आउट एक्चुअली एंड टू डू कम्युनिटी वर्क। अब ग्रास रूट वर्क इस वक्त जरूरत है, ग्रास रूट जॉब, जिस तरह हमने कहा देखें स्टेट बैंक फेडरल लेवल पे ऐसा कैश एहसास प्रोग्राम वट एवर, जो भी जितने भी कॉन्ट्रोवर्सीज हों, बहरहाल पॉइंट इसके वो उनकी फिर भी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं हो सकती जितनी की आपकी हो सकती है एज अ लोकल हेल्पर। अपने अपने गली मोहल्ले में देखें, अपने रिश्तेदारों से पूछें, कैन दे आइडेंटिफाई पीपल इवन इफ यू आर आउटसाइड, आप पूछें, प्ले योर पार्ट इन रीचिंग आउट टू मतलब वो लोग जो कि सफेद पोश हैं, उन लोग जिनके पास इस वक्त दिन की दिहाड़ी वाले हैं, आपके मोहल्ले में ही रहते हैं, आपके साथ शायद नमाज़ें भी पढ़ते होंगे।
अशर भाई ओवरसीज पाकिस्तानीज क्या करें?
एग्जैक्टली
मैं ओवरसीज ही की तो बात कर रहा हूँ। देखें ओवरसीज के लिए तो सबसे पहले तो इस बार एनजीओ जितना जबरदस्त काम कर रही है ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन अपनी उन्होंने प्लेटफॉर्म्स को डिजिटाइज किया है।
एनजीओस तो बस पैचवर्क है ना, वो तो आप बस चेक काट के दे दो, दैट्स
मैंने आपको कहा, मैंने कहा ना कि मैंने तो आप कह रहा हूं ना, देखें ऑब्वियसली कुछ बहुत बड़ी बातें हमने डिस्कस कर ली, हमने बात की गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी की, हमने बात की वोटर वोट दे, ये सारी चीजें तो हो गई ना, ये तो बड़ी बातें होंगी। अभी आज का काम करने का ये है कि देखें आप सबके रिश्तेदार तो होंगे ना यार, कोई तो होगा वापस पाकिस्तान में आपके गली मोहल्ले गांव में, आप उनसे बात करें, आप उनसे पूछें कि यार वो कौन से लोग हैं, मैं आपको पैसे भिजवाता हूँ, आप उनके लिए सामान राशन का
अदान भाई आपके गांव में लोग हैं अदान भाई कोई?
हाँ है हमारे गांव में, तो मैं देहात से छोटा सा चिचावती के देहात से मेरा ताल्लुक है, और वहाँ पे काफी 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 एनजीओ काम कर रही है, उसने काफी एनजीओ काम कर रही है, अलखिदमत बड़ा अच्छा काम कर रही है वहाँ पे हमारे गांव में, तो कर तो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी वो इनफ नहीं है।
आकिफ आई थिंक बिफोर आई थिंक एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें अगेन जिसका जितना लिमिटेड एक्सपीरियंस हो रहा है सोशल मीडिया पे देखने से उनको भाई सबको आइडिया हो रहा है कि इवन आफ्टर द ट्रेमेंडस वर्क ऑल दीज एनजीओज आर डूइंग, ये चीजें अभी भी हम लोग डिमांड मीट नहीं कर पा रहे जितने लोग को अभी राशन चाहिए फॉर
एग्जांपल। और भाई 70% आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है आउटसाइड एग्रीकल्चर, मतलब दैट्स टू दिस इंपॉसिबल टू।
मैं यही कह रहा हूं कि अभी तो एक माइनर सा इन्फ्लक्स आने वाला है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो ले ऑफ हुए हैं इन द गल्फ दैट इंक्लूड सऊदी यूएई एंड इवन इन द यूरोप। मैंने पर्सनली खुद देखा कि लोग कह रहे हैं कि भाई वी हैव लॉस्ट जॉब्स एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट पीपल जो यू नो ब्लू कॉलर जॉब करते थे। मैंने खुद देखा लोगों की पोस्ट है जिन्होंने 10-12 साल अच्छी जगहों पे काम किया हुआ है, अच्छी क्वालिफिकेशन, एंड देयर लूजिंग जॉब। तो आई मीन एट सम पॉइंट इन टाइम किसी ना किसी को भाई, क्योंकि अगेन लीगल कंसिडरेशंस भी होती हैं, दे विल हैव टू कम बैक टू अवर ओन कंट्री और फिर वहां पे उनको सर्वाइव करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स और सो। तो हम मतलब अगेन यहाँ पे जब अर्शद भाई कह रहे हैं ना कि अपने लोगों को देखें, तो आई थिंक प्राइमरली उन लोग को भी जरा जरूर देखें जो कि एट दिस पॉइंट दे आर इन एक डिफरेंट बैटल में है कि यार कहाँ होगा क्या होगा, क्योंकि उनकी करंट सिचुएशन इतनी बुरी है उनको ये भी नहीं पता कि वो आएंगे तो कैसे आएंगे, क्योंकि फ्लाइट इटसेल्फ एक थोड़ा बहुत इशू है, लोगों के लिए आना जाना मुश्किल हुआ है इंटरनेशनल सारा ट्रैवल बैन हुआ उसकी वजह से। तो दैट इज ऑल्सो यू नो सम कंसिडरेशन जो कि एक पड़ेगी। एक अगेन एनजीओज ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही हैं, मे बी दे विल बी स्ट्रेच्ड इवन मोर आफ्टर मोर पीपल कमिंग इनटू द कंट्री।
इसमें एक और फैक्टर है सुफियान, तुमने कहा था माइग्रेंट्स का, रेमिटेंसेस भी जो है खासतौर पे मई की काफी हिट करेंगी, काफी हिट करेंगी। उसको उन्होंने ओवरसीज उसको ऑफसेट करने के लिए उन्होंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स निकाले थे, मैं सुबह पढ़ रहा था, कुछ पता नहीं कुछ डिस्काउंट ओवरसीज पाकिस्तानी स्कूल के लिए कुछ सर्टन प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस देंगे, बट आई थिंक दैट्स जस्ट डैमेज कंट्रोल।
करेक्ट,
उसका इंपैक्ट तो हमें पड़ेगा, हमारे फॉरेक्स पे पड़ेगा, नॉट अ गुड टाइम। तो अशर भाई आप फिर डॉलर भेजेंगे वापस?
बस मैं डॉलरी को बोचार कर दूंगा अगर सुफियान मुझे ट्रांसफर कर दे टाइम पर, ठीक है ना
सुफियान, मेरा भी ख्याल रखना।
भाई यूएस फेडरल रिजर्व की बात कर रहे थे और उधर बता रहे थे कि भाई मेरे बिजनेस को तो लोन ही नहीं मिल रहे हो, वो मैं
ये तो मैंने अर्शद भाई नहीं कहा, अर्शद भाई ये तो मैंने नहीं कहा,
पेरोल प्रोटेक्शन हम बेचारे स्टेट बैंक की बात कर रहे थे, वो चलेगा यूएस फेडरल रिजर्व भाई, अब आप बताएं डॉलर ये नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा मुझे बताएं।
सुफियान का मसला उसका अनडॉक्यूमेंटेड है ना, ये मसला है।
सुफियान बेहतरीन, मेरे पास आइडिया तो मैंने तुम्हें कंस्ट्रक्शन में आओ सारा करो तुम,
व्हाइट
सारा करो।
ये सारा मेरा प्लान वो मीम नहीं है कि वो सारी स्कीम्स जोर से बोल के सबको बता दिया आपने, खत्म, मेरा सब कुछ एक्सपोज हो गया, अब तो बहुत लेट हो गई।
नहीं लेट नहीं, ऐसा नहीं है, नेवर लेट इन 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 द करंट सिनेरियो,
नेवर लेट टू बी टू करप्ट, नेवर लेट टू बी टू करप्ट,
नेवर लेट। आपके पास कम से कम अगले एक साल तक का तो टाइम है, गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस किया है दिसंबर तक का।
चलो लास्ट टॉपिक बिफोर वी गो, ये कहने एक ongoing trending story है ट्विटर पे, लम्स फी हाइक, लम्स जो जिनका पता आपको एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में लाहौर में, उनकी ये कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि उन्होंने एज यूजुअल हर साल अपनी जो है ट्यूशन फी बढ़ाते थे। अच्छा इस पे पहले एक डिस्कशन हो, इस पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी जो है किस तरह, या नॉट फॉर प्रॉफिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह अपने प्रॉफिट बना सकती है।
तो क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है?
एक मिनट अगेन, थोड़ा सा मिसलीडिंग है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट बनाती नहीं है। अगेन टू सम एक्सटेंट हर नॉन प्रॉफिट को प्रॉफिट बनाना पड़ता है टू यू नो रिमेन इन बिजनेस एंड हैव देयर एक्टिविटीज रनिंग, नॉट नेसेसरीली, बट मोर ऑफन
देन नॉट। बात करो मैं लीगली नहीं बात करो,
नहीं लीगली, क्योंकि उनका मोटिव ये नहीं होता, उनका मोटिव इज अगेन टू प्रोवाइड सर्विस रादर देन टू प्रोवाइड प्रॉफिट।
सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे आर रजिस्टर्ड एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट पाकिस्तान में, बेस्ड ऑन माई नॉलेज तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज जो है सिवाय लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या पंजाब को यूनिवर्सिटी आर, इनमें से एक जो है दे आर रजिस्टर्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि yes they can generate a profit just like any other company, but unlike एनी अदर कंपनी, वो प्रॉफिट जो है रिटर्न नहीं कर सकते अपने शेयर होल्डर्स को, वो प्रॉफिट वहीं पे रहेगा.
तो यहाँ फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव,
फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव, वो ओनर जो है, जैसे वो सुफियान पैसे वापस अपने घर लेके अपना आईफोन नहीं ले सकता उस पैसों से. हाँ, सुफियान अपने आपको एम्प्लॉय करके अपने आपको सैलरी देकर आईफोन ले सकता है अपने एनजीओ से, बट सुफियान वो डायरेक्ट घर लेके जा सकता
है. बिंगो बिंगो.
तो यार कोई यूनिवर्सिटी में स्कोप शॉप है, मुझे सोच रहा था मैं ऐसे.
आप प्रोसाइड प्रोफेसर लेकर आ जाएं, बहुत आपको भी इंस्टीट्यूट.
मैं खुद ही ना प्रोफेसर बन जाऊं, मैं खुद ही.
हां, फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, दैट्स ऑल यू नीड,
सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेसर.
तो हां, बैक टू लम्स. लम्स की कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने इस साल जो है बहुत ही ज्यादा अपनी फी इंक्रीज कर दी, अप टू बाय 41%. ऑन टॉप ऑफ दैट, जो स्टूडेंट्स को मेमो आया था, उन्होंने इसको इस तरह कैलिब्रेट किया कि एक्चुअली पर क्रेडिट आवर के हिसाब से आपके सिर्फ 13% बढ़ रहे. तो इन्होंने इसको बेसिकली मार्केट किया एज 13%, लेकिन स्टूडेंट्स ने फिर जब एक्चुअली कैलकुलेट किया, टोटल प्राइस 41.7% जो है इंक्रीज हो रही थी फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर. और दिस इज कीपिंग इनटू अकाउंट फॉर द फैक्ट कि कोरोना है, लोगों की जॉब्स खत्म हो रही है, लोगों की सैलरीज नहीं है, तो इस पर जो है लम्स को बदनाम किया जा रहा है. क्या ख्याल है अदनान भाई, आप किसकी साइड पे, लम्स की या फिर आप आवाम की साइड पे?
मैं लम्स की साइड पे हूं.
क्यों?
बस
कोई तो उनके साइड पर हो.
कोई तो उनकी साइड पे हो, सही बात है.
सुफियान मेरे ख्याल से उनकी साइड पे होगा.
नहीं, मैं मुझे आप ये बताएं कि उनकी साइड पे होना है, किसी की साइड पे होना है, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? यू वांट टू पे फॉर द ब्रांड, यू पे फॉर इट. दे आर अ ब्रांड एट द एंड ऑफ द डे एंड यू आर गोना पे फॉर दैट. आपको मार्केट में जॉब चाहिए, गुड लक फाइंडिंग इट विद अ डिग्री फ्रॉम LSE. And when I mean LSE, I definitely don't mean London School of Economics. So, bhai, good luck. ठीक है? तो you are paying for.
First of all, no disrespect to LSE.
देखें जो यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर होंगे, जो भी स्टाफ होगा, तो उसकी सैलरीज कैसे पे करेंगे?
नहीं तो अदनान भी 41% आप जस्टिफाई थोड़ी कर सकते. इतनी तो इन्फ्लेशन नहीं हुई पाकिस्तान में अभी तक. हो सकती है हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं.
वैल्यूएशन हो गई यार. प्रोफेसर्स कह रहे हैं हम तो डॉलर में कमाते थे, तो मैं लेकर आया यहाँ पे 40% डीवैल्यू.
क्योंकि हमें तो अपनी फैमिली डॉलर में पाल लिया ना.
तो अशर भाई कहेंगे ये बेसिकली पीटीआई का कसूर है.
पीटीआई का कसूर है यार. एक तो देखो, मतलब यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेरा एक मिनट, मुझे मार जितने बंदे जॉब पे लगते हैं उसके हिसाब से फीस रिवाइज करते
हैं. अब जॉब भी नहीं है खान साहब की वजह से.
एक अगेन जो पाकिस्तान टुडे का एक आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ द प्रीवियस फी फॉर 20 क्रेडिट आवर्स वाज 340-200. But after the 41% increase, it would be 482,000 for the same.
So 41%.
That's a lot. मतलब अगर आप even for monetary terms, अगर सिर्फ just forget relative measures भी, यार आप पौने 5 लाख रुपए दे रहे हैं for a semester, and I think that is
यार,
a little too much. So even for the name.
यार देखो, मैं एक बात कहूँगा. मैं 100 बातों की एक बात, you know, again, you're paying for a brand and you have to deal with it. There's literally nothing you can do about it. Unless and until the government comes in and regulate.
You can make noise on Twitter and, you know, shame them.
Can the government actually regulate them? Ministry of Education, Wizarat Taleem, kuch kar sakti hai sawal hai.
I think to an extent, yes. Lekin technically, Ministry of Education ke under nahi aate.
Not for profit. Haan, to theek hai. Ab dekho, baat sari ye hai ke bhai, unhone sare pure game bana kar rakha tha. ठीक है, वो हर साल करते हैं. ये सारी पूरी दुनिया की कहानी है, किसी एक तरफ की कहानी नहीं. और खास तौर पे वो लोग करते हैं जिनका अपना ब्रांड बना हुआ होता है. ठीक है ना. उसमें डॉक्टर्स तक शामिल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन शामिल है भाई. ये तो यूनिवर्सिटी है, ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन शामिल है. जो क्या लोगों की तकलीफ, आप कह रहे हैं ना कि लोगों की जॉब नहीं उस वक्त ये कर रहे हैं हालात में. बंदा मर रहा होता है उस पर कहते हैं कि पहले लाखों रुपए जमा करो फिर हम इलाज करेंगे. ठीक है. तो भाई ये तो दिस इज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, दिस इज कैपिटलिज्म. वेलकम, वेक अप, हेलो, गुड मॉर्निंग.
आई थिंक एक चीज ये भी है कि आई थिंक इवन आफ्टर द 41% इंक्रीज, आई डाउट अगर हम ऐसा सुनने में आया कि भाई लम्स को इतनी एप्लीकेंट्स नहीं मिले कि यार वो अपने कोटा फुल इन कर सके. इवन आफ्टर दिस
पहले भी समझाई थी कि देखें आप अपने हाथ से ये गड़ा खोदते हैं. फिर आप कंप्लेन करते हैं कि ये गड़ा क्यों 6 फीट है, ये 7 फीट क्यों हो गया, ये 8 फीट क्यों हो गया, 9 फीट क्यों हो गया। भाई गड़ा तो आप ही ने खोदा था, ठीक है ना, तो वो रिवायत तो आपने सेट कर दी थी, ठीक है। और हुआ यही कि अच्छा एम्प्लॉयर्स ने भी रिवायत सेट की थी, आईबीए के बच्चे, लम्स के बच्चे, जीआईके के बच्चे, मतलब आप समझे, तो मतलब ये रिवायतें भी सेट हो गई थी, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं तो समझता हूँ कि आज की जनरेशन को ये रियलाइज करना चाहिए, मैं ऑब्वियसली दिस इज वेरी रेडिकल, नॉट एग्जैक्टली सॉल्यूशन एंड अ रेडिकल थिंकिंग ऑनेस्टली आज के वक्त के हिसाब से, मगर 10 साल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ हमारी फ्यूचर जनरेशन हम पे हंसेगी कि हम इनको फीस दिया करते थे, ठीक है ना, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फीस दिया करते थे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ,
10 साल, दैट्स अ वेरी, दैट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम, मेरे 10 साल,
10 साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा यार। यू लुक एट यूडेमी, यू लुक एट सम ऑफ द ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस, एक्चुअली फुल फ्लेश्ड इंस्टीट्यूशंस
पाकिस्तान में
क्या बाहर, जाहिर सी बात है क्या, मैं बाहर की बात,
हाँ, कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं ना, लम्स वाले
लेकिन पाकिस्तान में आ जाएगा ना,
इट्स गोना बी बिकम अ ग्लोबल हब, इट्स गोना अल्टीमेटली बिकम अ ग्लोबल हब यार।
तो आपको क्या लगता है ये यूनिवर्सिटीज जो है ये अडैप्ट नहीं करेंगी,
अडैप्ट कर ही नहीं
ना, क्या मतलब, इन वो किस 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 सेंस में, फीस के हवाले से दे विल हैव टू रेज इट डाउन। अब जब मैं $10 का कोर्स,
$15 का ही है, कुछ जॉब्स जो है वो लीड स्कूल्स के लिए ही होती है, उनका अपना नेटवर्क होता है, अलमनस नेटवर्क होता है उनका।
दिस साइकिल विल हैव टू एंड इट इज एज वी स्पीक डाइंग डाउन, दिस इज डाइंग डाउन।
तो फिर ये लेकिन कैसे, इनकी तो फी बढ़ा रहे हैं,
स्किल बेस्ड ना,
वो तो डिमांड बढ़ा, वो तो अपनी प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी डिमांड
है। मैं कह रहा हूं कि लोगों को, ऑफ कोर्स ना, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो आज नहीं, वो डिमांड नहीं बढ़ी, जब तक ये डिमांड है ये बढ़ाते जाएंगे, ये इस तरह समझे आप। मगर जब स्किल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा जाएंगे, अप्रेंटिसशिप की तरफ ज्यादा हम फोकस करेंगे, आई थिंक विल गो बैक टू इट, बिकॉज ये फीसें कोई दे ही नहीं पाएगा। एट सम पॉइंट इन टाइम लोग कहेंगे यार मतलब क्या, फॉर द एलीट, बाय द, यानी बाय द एलीट एंड फॉर द एलीट वाली कहानी है ना, ठीक है ना। तो ये जब अल्टीमेटली ये यहाँ पर, तो इफ यू लेट दिस हैपन, मैं सिंपल सी बात बता दूं, इफ यू कंटिन्यू टू लेट दिस हैपन एंड एम्प्लॉयर्स कंटिन्यू टू लेट दिस हैपन, एक बड़ा ह्यूज पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटेंट सोसाइटी, मतलब पार्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट सोसाइटी ना, जो लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो फीस नहीं दे पाते, जो सब फाइनेंशियल उसमें एड में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसका भी एक कोटा है, वो सब साइडलाइन हो जाएंगे और आपका मुल्क ना एक अलग तरफ
साइडलाइन क्यों होंगे, नहीं साइडलाइन क्यों होंगे, वो जो है किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उस यूनिवर्सिटी का जो है
नहीं, एम्प्लॉयर्स उनको नहीं, वो एम्प्लॉयर्स आर नॉट गोइंग टू गिव देम टॉप जॉब्स, एंड पे वो टॉप जॉब्स उनको नहीं मिलेंगे,
क्यों, लेकिन वो कॉम्पिटेंट है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट है,
ऐसा लो हमारे पूरे गवर्नमेंट बड़ी जबरदस्त, अभी पूरी बात हुई है यार, अभी पूरी
कॉम्पिटेंसी की,
क्या कॉम्पिटेंसी की पूरी बात हुई है भाई, एक घंटे
गवर्नमेंट
मेरिट कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी सिर्फ काकू लगे एडमिशन निकलती है, ये सारी यूनिवर्सिटी का कोई फायदा नहीं है आपको, अच्छी
और वहीं से हमने सारे निकाले अपने सीईओ और सारे, ठीक है ना,
जितने सीईओस हमारे आर्मी ने निकाले ना, कोई भी हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड किसी ने नहीं निकाले,
exactly, ठीक है सब, मैं वैसे बेहतरी, मैं बता रहा हूं, बैंग फॉर बक आप जाएं और ऐसे मतलब बाकी का कोली ज्वाइन कर
लें। अदाम भी क्या ख्याल है?
मेरा ख्याल वही है जो अशर भाई का,
आर्मी बेस्ट
आज सितारे बहुत मिल रहे हैं, इब्राहिम भाई नहीं है लग रहा है,
हमें जो है अपनी सिविक ड्यूटीज करनी चाहिए और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वोट देना चाहिए अच्छी पार्टीज को, और ये क्या है फजूल बात,
अशर भाई भी तकरीर कर रहे हैं यार, पूरी तकरीर भाई, इमरान खान को बदनाम करते हैं, खुद भी तकरीर कर रहे होते हैं,
बस सिंपली आप आए और भाई को वोट दे, वोट फॉर ब्रो, वोट फॉर द ब्रो। नहीं अनफॉर्चुनेटली जो है हम आज भी अपने फीमेल स्पीकर से बात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम खत्म हो गया, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, पर्सनली अपोलोजाइज एंड देन अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ पॉडकास्ट चौक। कोई फाइनल रिमार्क्स गाइस?
मैं मेरी तरफ से होगा, बस मैं अगेन वही, आई थिंक दैट हैज टू बी रिइटरेटेड जो अशर भाई ने पॉइंट रेस किया था कि अगेन बहुत बहुत ही पतले हालात है हमारे मुल्क के भी एंड हमारे लोगों के भी, ट्राई टू रीच आउट एज मच एज यू कैन, इट डज नॉट मैटर कि आप ₹1 दो कि $1 दो, डज नॉट मैटर, आप वट एवर यू हैव, कितने भी आपके पास सकत है, जस्ट गो फॉर इट, कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो आखिरत में होगी, अल्लाह ताला इज मोर अबाउट कि आप उस बंदे ने किस नियत से दिया और कैसे दिया
और क्या स्ट्रगल थी उसके पीछे, रायत की क्या एक्चुअल फाइनल अमाउंट गई थी। तो इट इज
ज़कात देने के लिए इंतजार ना करें, बिल्कुल 27 का इंतजार ना करें, आखिरी अशरे का इंतजार ना करें, जस्ट पे इट नाउ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्लीज पे योर टैक्सेस सुफियान। तो अदर देन दैट प्लीज हमें सब्सक्राइब करें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ओवरकास्ट, पॉकेटकास्ट, स्टिचर, रेडियो हेड, रेडियो पब्लिक, रेडियो रिपब्लिक, पब्लिक रेडियो, अब मैं बस नाम ले रहा हूँ इनको।
हम रैप सॉन्ग बना सकते हैं
यार, वो अब्दुल्ला भाई की टेरिटरी है रैप सॉन्ग, वो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दैट।
लेट्स सी अब्दुल्ला भाई क्या लेकर आते हैं हमारे लिए।
और वंस अगेन अपोलॉजीज, हम स्पीक अपने फीमेल स्पीकर से नहीं बात कर सके, एंड ऑन दैट टेरिबल डिसअपॉइंटमेंट, सलाम फ्रॉम द चौक।